ओम शांति।
ओम।
अभी आपने बाबा के महावाक्य सुने होंगे। हर दिन प्यारा बाबा हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है। मुरली सुनने के बाद हमें जो ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र मिलते हैं उनसे माया से लड़ाई कर उस पर विजय पाई जाती है। तो जो बाबा की बातें हैं ये हमारे क्या हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। सारा दिन किसके साथ युद्ध है, माया के साथ युद्ध है। तो माया हमें हरा ना दे इसलिए बाबा अपनी सेना को रोज तैयार रखता है, अलर्ट रखता है और सेना से बात भी करता है। अपनी सेना से, हम बाबा की सेना के हैं ना, तो बाबा हमसे बात करते हुए हर रोज समझानी हमें देता है और मुरली के द्वारा हमारे अस्त्र शस्त्रों को पैना करता है ताकि जब माया से युद्ध हो तो बाबा को लगे कि मेरे महावीर बच्चे, मेरे ये बच्चे माया के ऊपर विजयी बन सके। माया से युद्ध होती है या नहीं होती? होती है। माया आपको पछाड़ती है या आप माया को पछाड़ते हो? जीत किसकी होती है? कभी माया जीत जाती है, कभी हम जीत जाते हैं। लेकिन बाबा कहता आपने हारना नहीं है। जो हार गए वो बाबा के गले के हार नहीं बनेंगे। आपने जीत पानी है। संगम योग जीत पाने के लिए है। संगम योग विजयी बनने का युग है। संगम योग कमाई का युग है। संगम युग तपस्या का युग है। इस युग में जो पुरुषार्थ आपने अभी किया वो कल्प कल्प की नूंद और जन्म जन्म का भाग्य बनाने वाला होगा। इस समय कमाई कर ली, 5000 साल आराम से खाएंगे। जैसे बिजनेस वाले करते हैं ना, साल में कुछ महीने ज़्यादा काम होता है, जब उनका अनाज आ गया मंडी में तो कहेंगे जी आजकल तो सीजन है, आजकल तो कमाई करनी पड़ेगी, बाद में खाली हो जाते हैं, फिर आराम से रहते हैं। बच्चे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते हैं, उस वक्त मेहनत का काम है, बाद में अफसर लगे आराम से सारा काम चलता रहता है, पैसा आता रहता है। बाद में कमाई करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती है? बाद में मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? अपने आप आता रहता है। एक बार सरकारी नौकरी लग गई, सैलरी आती रहती है। रिटायर भी हो गए तब भी पेंशन आती रहती है, क्योंकि बचपन में जब कम टाइम था पढ़ाई का उस वक्त उन्होंने मेहनत की। इसी तरह अभी हमारा जो टाइम है ये पढ़ाई का टाइम है, कमाई का टाइम है। इस वक्त अगर लापरवाही की तो फिर सारा कल्प मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। जैसे कई लोग बचपन में पढ़ते नहीं, बाद में फिर कोई बड़ा अफसर नहीं बना, कुछ नौकरी नहीं लगी तो फिर क्या करेंगे? सिंपल, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मिलता कितना है? सबसे कम मजदूरी भी, काम भी ज़्यादा और प्राप्ति भी कम। तो वैसा ही है अभी संगम युग पर। अगर मेहनत भी बाबा नहीं कहता, बाबा कहता मेरी मोहब्बत में पुरुषार्थ करो, तो मेहनत भी फील नहीं होगी। मेहनत तो मजदूर लोग करते हैं, बाबा कहता तुम तो मेरी मोहब्बत में रह के पुरुषार्थ करो, अपने आप हो जाएगा। लेकिन इस कमाई के टाइम पे अगर हमने कमाई कर ली तो 5000 साल राजा बन के खाएंगे। राजा को मेहनत करनी पड़ती है। राजा के सबसे ज़्यादा ठाट होते हैं, हर चीज़ उसके पास होती है, लोग उसके पास खुद आते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? मैं बड़े बड़े महलों में गया, राजाओं के किलों में गया। लास्ट महीने चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक जगह है, बहुत बड़ा किला था वहाँ पर, बहुत बड़ा, 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उस किले में जहाँ की पद्मावती की कहानी जहाँ से जुड़ी हुई है, रानी पद्मिनी जो जौहर हुआ था, तो इतना बड़ा किला, इतने बड़े बड़े महल, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, हालांकि अब टूट गया है, खंडर हो गया है, फिर भी देख के लगता है कि कितनी मेहनत से बनाया होगा, लेकिन राजा ने तो नहीं बनाया। राजा के लिए प्रजा ने पत्थर पत्थरी कहां कहां से उठा उठा के इतने दिनों मेहनत करके बनाया, और राजा आराम से रहता है। एक वीडियो मैंने देखा अंग्रेजों के टाइम का, जिसमें राजा का दरबार, जो कलयुगी राजा भी थे, 1940 के आसपास राजा का दरबार लगा हुआ है इसी राजस्थान के राजा का। क्या उसकी शान, क्या उसके ठाट, जूते उठाने वाला अलग, जूते पहनाने वाला अलग, हर मंत्री हर सेनापति उसको आके झुक के सलाम कर रहा है, हाथी पे बैठ के शहर में उसकी सवारी निकलती है, सारे लोग देख रहे हैं। लोग बेचारे गरीब से उस टाइम, जो शहर के लोग, उनके कपड़ों से लग रहा था कि ये तो साधारण लोग हैं, और राजा का ठाट। तो राजा और प्रजा में कितना फर्क है। इसलिए बाबा कहता, क्या बनने का पुरुषार्थ करो, राजा या प्रजा? राजा बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि एक बार राजा बन गए तो कल्प कल्प क्या बनेंगे? राजा। और एक बार चूक गए, और एक बार सत्युग में आपको लगा दिया पहरेदार, जैसे वहां पहरेदार की जरूरत होती नहीं है, तो मान लो चौकीदार पहरेदार को भी काम मिल गया, तो हर कल्प क्या बनोगे? वही बनोगे। तो बाबा कहता, मैं राजा बनाने आया हूं या पहरेदार बनाने आया हूं? दास दासियां, बाबा कहता, दास दासी तो बोल ही अच्छा नहीं लगता सुनने में, दास मतलब गुलाम की तरह हो गया ना, उसकी अपना कोई जीवन नहीं है, वो राजा के लिए बस उसके आसपास उसके लिए सब कुछ करता रहेगा, अपनी पर्सनल कोई चीज नहीं है। हालांकि राजा को देखेगा, श्री कृष्ण के साथ रहेगा, लेकिन सबसे पहले खाना श्री कृष्ण खाएगा, जो बच गया वो भी खा लेगा बाद में। राजा को लोग मिठाई दे के गए, मान लो पहले राजा खाएगा, अब राजा कितनी खाएगा, थोड़ी बहुत बाद में दास दासियां खाएंगे, लेकिन स्टेटस में फर्क है। राजा, दास दासी, प्रजा, वजीर वहां होते ही नहीं है, आधे आधे तो पद ही नहीं है वहां पर। आदमी बने तो बने क्या, या तो राजा बनो, या बाबा कहता साहूकार बन जाओ, या रॉयल फैमिली में आ जाओ, या प्रजा में साधारण बन जाओ। साहूकार भी होंगे, उनके पास भी नौकर चाकर होंगे, वो भी पैसे वाले होंगे, चाहे प्रजा में होंगे, लेकिन वो भी धनवान होंगे। धनवान तो वहां हर कोई ही है, किसी चीज की कमी होती ही नहीं है, लेकिन कहने में किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, इतना तो फर्क है ना। राजा के पास जितना मधुवन है इतना बड़ा महल होगा, और जो छोटा होगा प्रजा वाला, जितना यहाँ का सेंटर है इतना घर, तो इससे बड़ा घर तो उसका भी होना चाहिए। उसको भी बाबा बहुत कुछ देता है। जिसने भी एक बार मेरा बाबा कह दिया, बाबा उसको बहुत कुछ देता है। बस आपने दिल से कहना है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। चार बातें याद कर लो, जब भी कहीं फंस जाए, समस्या आ जाए, परिस्थितियां आए, कुछ दिखाई ना दे रहा हो, बस दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा आपके पास हाजिर हो जाएगा। बाबा ने कहा है मुरली में, दिल से कहना। और ये महामंत्र है मेरा बाबा। जैसे आप प्यारा बाबा कहते हो, मीठा बाबा कहते हो ना, प्यार पैदा होता है या नहीं होता? तो प्यार पैदा हो गया, बाबा को दिल से पुकारा, दिल से आपने कहा, तो बाबा आएगा नहीं, आपके लिए नहीं आएगा तो किसके लिए आएगा? आपका प्यार, आपकी याद इतनी जबरदस्त हो कि आप बाबा को बुलाएं और बाबा नंगे पांव दौड़ा आ जाए, आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को ये अथॉरिटी दी हुई है, ये हक दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है कि जब भी हम बाबा को याद करेंगे, सच्चे दिल से याद करेंगे, बाबा हमारी मदद करने के लिए बंधा हुआ है, वो हमारा है, हम उसके हैं। मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी आसान बात है, मैं बाबा का। लोगों को तो बाबा का पता ही नहीं है, बाबा है क्या चीज। उन्होंने तो देहधारियों को बाबा जी कह देते हैं, फलाना बाबा फलाना बाबा, और आजकल बाबाओं का नाम बदनाम हो रखा है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि असली बाबा कौन है। बाबा मतलब पिता, और वो परम पिता को ही असली बाबा हम कह सकते, बाकी तो झूठे भगवान हो गए, झूठे बाबा हो गए। अब उन्हें पता चले कि वो निराकार शिव बाबा है, ज्योति स्वरूप है, वो भी अपना वर्षा ले ले, पर उनको पता ही नहीं है, उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। और आपने मेरा बाबा जान लिया, समझो सारा ब्रह्मांड जान लिया, सारी दुनिया की नॉलेज आपके पास आ गई, क्योंकि आपने क्या जान लिया, मेरा बाबा जान लिया, मेरे बाबा में सब कुछ समाया हुआ है। जिसने बाबा को जान लिया सब कुछ जान लिया। ये डायमंड शब्द बाबा ने हमें दिया हुआ है, मेरा बाबा। बाबा के ज्ञान में चलने वाले साधारण से साधारण लोग, साधारण से दिखने वाले, आपको लगेगा तो अनपढ़ व्यक्ति है, ये तो उस गांव का है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा है, जिसको तो दुनिया का पता ही नहीं है। जैसे कहीं होते हैं, आपसे मैं पूछूं चंडीगढ़ किधर है, उन्होंने कभी चंडीगढ़ नहीं देखा होगा, कभी दिल्ली नहीं गए होंगे, लेकिन बाबा ने उनको भी होशियार बना दिया, बाबा ने सबको होशियार बना दिया। वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, बाबा की मुरली सुन के वो भी कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द यूज करते हैं। एक बार एक माता जा रही थी ट्रेन में, तो ट्रेन में कोई सीट का था एक ही जगह, कोई दूसरा आ गया था, क्या था, टीटी कहे जी आपको तो जुर्माना देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हमारा तो कानून है ऐसे, दूसरा कोई जा नहीं सकता, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, जो भी कारण होगा। तो वो माता गांव की कहती, कहते भाई थोड़ा सा तो लव और ला का बैलेंस रख, लॉ दिखा रहा है, लव भी दिखा थोड़ा। तो देखे कि ये देखो, तो यहां बाबा ने सबको होशियार बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि आप देखने में सिंपल हो सकते हैं दुनिया की नजर में, पर बाबा की नजर में आप महान आत्मा हैं। बाबा को पता है ये देव आत्मा है, सतयुग में ये देवियां थी सारी, अब यहां सिंपल हो गए तो क्या हो गया, यहां तो रावण ने लूट लिया सब कुछ, लेकिन सतयुग में तो आप देवी देवता थे। बाबा को पता है कलप पहले वाली महान आत्मा है, इनसे श्रेष्ठ ना कोई हुआ है ना कोई होगा। तो बाबा आपको उस नजर से देखता है, अब हमें भी अपने को उसी नजर से देखना है जिस नजर से बाबा हमें देख रहा है। बाबा ने कह दिया आप देव कुल की महान आत्माएं हो, तो आपने अपने आप को निश्चय कर लेना है कि हां हम देव कुल की महान आत्माएं हैं, हम ही कल्प कल्प देवता बनते हैं, और पहले भी बने थे, अब दोबारा बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता हम, भगवान का हाथ अब हमारे ऊपर है, भगवान हमारा मदद के लिए बैठा है। पढ़ा होगा ना अपने स्लोगन, कहीं लिखा होता है बाबा के चित्र में, चिंता मत कर मैं बैठा हूं। जैसे घर में बुजुर्ग कहते हैं ना, किसी का बुजुर्ग घर में हो तो बच्चों को चिंता की जरूरत नहीं होती, वो कहते जी बैठे हैं दादाजी, कभी कोई समस्या आ गई तो दादाजी कुछ ना कुछ उससे हमें बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे ही वो कहते भी घर में बुजुर्ग बैठे हैं जी उनसे बात करो, अभी तो हमारे बुजुर्ग है घर में वो बैठे हुए हैं। तो हमारे पास कौन बैठा हुआ है, दुनिया की सबसे ऊंची हस्ती सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ देने के लिए तैयार है। गीता में है कि जिधर स्वयं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और जिधर धनुर्धर अर्जुन है, जीत उसी साइड की होगी। तो हम कौन है, हम धनुर्धर अर्जुन, हम भी कम नहीं है, हमारे पास भी गांडीव है, अस्त्र शस्त्र हैं ज्ञान और योग के, और हर रोज उनको हम पहना करते हैं मुरली से, हमेशा युद्ध के लिए तैयार माया से। और उधर बाबा है, तो दोनों जहां है उनकी जीत होगी ही होगी। हमारे जैसा खुशनसीब भाग्यवान कोई है? कोई है दुनिया में? कोई नहीं है। कोई तो होगा, कोई भी नहीं है। भाग्य लिखने की कलम बाबा ने किसके हाथ में दे दी? लोग तो भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं, भगवान ये दे दो मुझे, ये दे दो मेरा भाग्य ऊंच बना दो, मुझे ये दे दो। पर बाबा ने हमें क्या कहा? थोड़ा थोड़ा दिया कि सारा ही दे दिया? उसने कहा जितना लेना है ले लो, ये लो कलम, अपना भाग्य खुद लिखो, जितना चाहो उतना ऊंचा लिख लो। तो कितने सौभाग्यवान हुए हम, हुए या नहीं हुए? तो अब खुशी से बाबा कहता रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, खुशी में खगियां मारो। बाबा कहता ना कि मार मुरली में, या ऐसी खुशी गाना भी बना हुआ है, हमको मिली ऐसी खुशी जो किसी को मिलती नहीं। खुशियों का खजाना बाबा ने हमारा भर दिया, क्या थे और क्या से क्या बना दिया। हमेशा अपने को इस स्मृति में लाओ कि हम क्या थे और आज क्या बन गए हैं। और ये सारी मेहरबानी किसने की हमारे ऊपर? बाबा ने। इसलिए बाबा को क्या करना है? शुक्रिया बाबा। क्योंकि सारा क्रेडिट किसको जा रहा है? बाबा को। बाबा ना हो तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। उर्दू में कहते हैं नाचीज, मैं कोई चीज नहीं हूं। अब है ही क्या? जो बनाया, जो हमें कुछ दिया, किसने दिया? बाबा ने दिया। करण करावन हार करा रहा है, हम केवल करण हार हैं, निमित हैं। जो बाबा हमसे कराए बस निश्चिंत रहो, निश्चय रखो बाबा के ऊपर कि बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, है ना? जिसको निश्चय होगा वो क्या होगा? निश्चिंत रहेगा। उसको पता है कि निश्चित विजय मेरी ही होगी, इसलिए वो निश्चिंत है। उसने अपने सारे बोझ किसको दे दिए? बाबा को दे दिए। अब उसकी हर चीज की जिम्मेवारी बाबा की है। अब सिर पे गठरी उठाने की जरूरत नहीं है। अब गठरी दे दी किसको? बाबा को दे दी। पहली पहली ट्रेन आई हरियाणा में, पहले पहले 200 साल 150 साल पहले, एक गांव का आदमी, उसने कहीं जाना था, किसी ने थैला सिर पे उठाया और उसने गठड़ी, किसी ने कहा भाई आजकल ट्रेन में जाओ, क्यों पैदल जाते हो? वो ट्रेन में बैठ गया, लेकिन उसने क्या किया, जो गठड़ी थी ना थैला, वो सिर पे ही रखा। उसे ये पता नहीं कि भाई ट्रेन तुझे उठाएगी, तेरा थैला भी उठा लेगी। उसको लगा कि मैंने टिकट अपना लिया, थैले का तो नहीं लिया, थैला तो मैं सिर पे ही रखूंगा। तो हम क्या करते हैं? वही गलती करते हैं। हम थैला जो बोझ है ना हमारे पास, जिम्मेवारियों का बोझ, कई काम करने पड़ते हैं, वो बोझ वो सिर पे उठा के घूमते रहते हैं। अब बाबा कहता मुझे दे दो, मैं उठाने आया हूं तुम्हें, तुम्हारे बोझ मुझे लेके अपने आप को हल्का कर दो, सारे बोझ मुझे दे दो। हम देते नहीं, हमें वो थैला पसंद आ गया है, पुराना थैला होता था पुराने जमाने में, आजकल तो बढ़िया बढ़िया बैग आ गए, अटैचियां आ गए, पहले थैले होते थे जिसको झोला भी कहते, पता नहीं कहते हैं तो झोला, वो उठा के हम छोड़ना ही नहीं चाहते, हमें उससे प्यार हो गया है। हम कहते नहीं, हमने अपनी चिंता खुद करनी है। अब बाबा कहता अगर तुम अपनी चिंता खुद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा, और अगर तुम निश्चिंत रहे तो तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। वो सुना है महाभारत की कहानी? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जयद्रथ को श्री कृष्ण ने मारना था, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार सका तो मैं खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा, मैं आत्मदाह कर दूंगा। अब श्री कृष्ण जी एक रात पूर्व अपने शिविर में सोच रहे थे कि कल, क्योंकि वो सारथी था, वो युद्ध लड़ा नहीं पर युद्ध में गाइड कर किया अर्जुन को, तो उसने सोचा कि कल क्या किया जाए, क्या योजना बनाई जाए, क्या युद्ध नीति बनाई जाए ताकि कल के दिन जयद्रथ को मारा जा सके। उसने सोचा कि जो अर्जुन होगा वो बड़ा टेंशन में होगा आज, क्योंकि उसने इतना बड़ा काम मोल ले लिया है और वो जरूर अपने शिविर में टेंशन में होगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा मैं उसे जाकर रिलैक्स करता हूँ, उसकी टेंशन दूर करता हूँ, उसको थोड़ी हिम्मत देता हूँ जाके। तो ये सोच के श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में जाते हैं और क्या देखते हैं कि अर्जुन जी अपने शिविर में बेड में पड़े हुए सोए हुए हैं और खराटे मार रहे हैं, आराम से खराटे मारकर सो रहे हैं। श्री कृष्ण को बड़ी आश्चर्य हुआ कि कल इसने इतना बड़ा काम करना है और ये निश्चिंत होकर सो रहा है। उसने उसको जगाया, अर्जुन उठ उठ, तुझे पता नहीं है कल तूने क्या करना है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तूने कर ली और तुझे कल अगर नहीं जयद्रथ को मार सका खुद मरना पड़ेगा, और तू यहां निश्चिंत होकर सोया हुआ है, तुझे कोई चिंता नहीं है। तो अर्जुन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अर्जुन ने कहा जिसके लिए भगवान जागे हों वो निश्चिंत होकर सोएगा नहीं तो और क्या करेगा। तो आप भी ये सोचो ये आपके लिए कौन जागा हुआ है, भगवान जाग रहा है, आप आराम से सो जाया करो बस। लेकिन योग के टाइम नहीं सोना, शिव बाबा योग कर ले, नहीं, चिंता मुक्त रहना है, अपनी चिंताएं बाबा को अर्पण कर देनी है। वो कहते चिंता तेरी मिटे तब मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, भक्ति का गाना है। जब हमारे चिंतन में बाबा होगा, बाबा की बातें होंगी, तो चिंता खत्म हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? एक चीज है, बाबा कहता मुझे याद करो, हमें याद ठहरती नहीं, याद भूल जाती है। क्यों? अब बाबा को याद करने का क्या अभिप्राय है? बाबा कहता मुझे याद करो, हर मुरली में आता है, आत्मा समझकर मुझे एक बाप को, पारलौकिक बाप को याद करो। क्यों बाबा कहता कि मुझे याद करो? उसे क्या मिलेगा? हम उसे याद करेंगे, उसे कुछ मिलेगा? तो खुश हो जाएगा कि देखा है मेरे को याद करते रहते हैं, मैं इनको दे देता हूं कुछ, ऐसी बात है। हम तो खुश हो जाते ना, हमें कोई कहे कि मैं तो आपको कल बड़ा याद कर रहा था, आप खुश हो जाएंगे, देखो ये मेरे को बाद में भी याद करता है। लेकिन बाबा तो ऐसे खुश नहीं होता कि उसको याद करेंगे वो खुश हो जाएगा और आपको सब कुछ दे देगा। क्यों बाबा कहता है कि मुझे याद करो? उसका तो कोई स्वार्थ है नहीं। उससे भी पहले बाबा को याद करने का मतलब क्या है? आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं, अपने बच्चे को पोते को याद करते हैं, तो क्या याद करते हैं? एक तो उसकी शक्ल थोड़ी सी याद आती है, और क्या याद आता है? उसकी बातें याद आती है ना, उसने आपके साथ कुछ बातचीत की हो, वो सारी बातें याद आती है ना। तो याद करने का मतलब है उसकी बातों को याद करना। तो बाबा को याद करने का अभिप्राय है कि बाबा जो ज्ञान दे रहा है, बाबा ने हमें जो प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी हैं, उन्हें याद करना। हुआ ना? तो बाबा को याद करना सिंपल हुआ या नहीं हुआ? कई कहते हैं जी योग ही नहीं लगता, बाबा याद ही नहीं आता। अब आप सोचते रहे बाबा बाबा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु, दो तीन मिनट पांच मिनट निकल गए, उसके बाद आप बोर होने लग जाओगे। ज्यादा देर आप ज्योति बिंदु पे कंसंट्रेट कर पाओगे? थोड़ा मुश्किल काम है। तो बाबा कहता बाबा को याद करना माना बाबा की बातों को याद करना, कि बाबा ने कितना अच्छा आज मुझे ये बात बताई, अब मुझे बाबा ये बात करनी है जो आपने कहा, मैं करके दिखाऊंगी। तो ये हो गया बाबा से बातें करना। बाबा से बात करना ही तो बाबा को याद करना हुआ ना। एक है कि बाबा की बातों को याद करना जो पहले हो चुकी हैं, बाबा ने हमारे साथ मुलाकात की, मधुबन में आप गए, हॉल में बैठे हैं, बाबा मुरली चला रहे हैं, बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं, वो सीन याद आ गया, ये भी बाबा को याद करना हुआ। अच्छा, आप चार जो धाम बने हैं अपने पांडव भवन में, वहां पहुंच जाओ, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठ के बाबा वाणी चला रहे हैं, अपने आप को वहां इमर्ज करो, बाबा के कमरे में, शांति स्तंभ में, झोंपड़ी में, थोड़ा सा वो भी बाबा को याद करने का पार्ट हो गया। अपने स्वरूप, पांच स्वरूप जो है कौन कौन से हैं, आदि, अनादि, मध्य पूज्य स्वरूप, और अभी का संगम युग का स्वरूप, और फरिश्ता स्वरूप, उनको याद करो। तो इन चीजों को याद करना मतलब बाबा को याद करना, या बाबा की शिक्षाओं को याद करना, बाबा ने जो काम दिया उसे याद करना, कैसे मैं उसे करूंगा, कैसे ये चीजें होंगी, उसके ऊपर मनन चिंतन करना, ये सब योग के ही हिस्से हैं। केवल ये कि मैं आत्मा, शिव बाबा आत्मा, केवल यही योग नहीं है, इसमें स्थिर होना मुश्किल है, ये भी करना है, लेकिन वैरायटी हर चीज करने, तो बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। अब मैं जो प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि बाबा क्यों कहता है मुझे याद करो, उसका क्या अभिप्राय है वो बताइए। बाबा को याद करके, बाबा को तो कुछ मिलने वाला नहीं, मिलेगा किसको, हमें मिलेगा। एक सिंपल सा सिद्धांत है जो आप याद रखना, जिसे भी आप याद करेंगे उस जैसा बन जाएंगे, उस जैसा बन जाएंगे। किसी ने आपको दुख दिया हो, सताया हो, जैसे उसे याद करोगे तो क्या फीलिंग आने लगेगी, दुखों की फीलिंग आने लगेगी। और किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया हो, बड़ी मदद की हो, और उसको याद करेंगे तो कैसी फीलिंग आने लगेगी, खुशी की फीलिंग आने लगेगी। जिसको याद करेंगे उस जैसा होने लग जाएगा, आपको वैसे बनने लग जाएंगे। अब बाबा कहता है किसी भी देहधारी को याद ना करो, क्योंकि देहधारियों के पास कुछ है जो हम उनकी तरह बने। आप मेरे को याद करते रहो, मान लो आप कहो जी बहुत अच्छे भाई रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके गए, बड़े ऊंच भाई हैं, मेरे को याद करने लग जाओ तो कैसे बनोगे मेरी तरह। अब मैं कोई संपूर्ण तो हूं नहीं, मेरे में 10 अच्छे गुण होंगे, 5 अवगुण भी होंगे, तो 10 तो आएंगे आपके साथ, पर वो 5 भी आ जाएंगे साथ में, देहधारियों की कभी हुई ना। इसलिए बाबा कहता कोई भी काका, मामा, नाना कोई याद ना आए, क्योंकि वो संपूर्ण नहीं है। उनको याद करेंगे तो उन जैसा या उनसे भी नीचे तक बनोगे, और अगर बाबा को याद किया तो कैसे बनेंगे, बाबा जैसे बन जाएंगे। तो किस जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है, बाप समान, जिसे बाबा कहता है कि हम बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि बाबा सर्व गुणों का सागर है। तो उसको याद करेंगे तो सारे गुण आपके पास आ जाएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ना, सारे गुण, सारी शक्तियां, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। हुई है बात क्लियर कि बाबा को क्यों याद करना चाहिए, देहधारियों को क्यों नहीं याद करना चाहिए। फिर बाबा कहता कि अपने आप को पुरुषार्थ में आगे ले जाना है, पुरुषार्थ की रफ्तार दिन प्रतिदिन हमारी बढ़नी चाहिए। आज जो हमारा पुरुषार्थ है, आने वाले कल में और आगे बढ़ना चाहिए, उससे अगले कल में और आगे बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ ग्राफ जाना चाहिए, हर दिन हमारा प्रगति का हो। हमें ज्ञान मार्ग में चलते हुए रुकना नहीं है, जो रुक गया सो मर गया, और जो चलता रहा वो मंजिल तक कभी ना कहीं पहुंचेगा जरूर। चाहे आप धीरे चलो, जरूरी नहीं है कि आप जंप लगाते हुए ही चलो, धीरे भी चलो पर दिशा सही रखो, तो कभी ना कभी तो पहुंच जाओगे ना मंजिल पे। बस बाबा का हाथ और साथ छोड़ना नहीं है, पल्लू पकड़ के रखना है। पल्लू होता है ना माताओं का पल्लू, शादी के टाइम बांध देते हैं पति के साथ, या भी इनका आपने छोड़ना ही नहीं है, इनका पीछा नहीं छोड़ना आपने, वो चला भी जाए पर आपने पकड़ के रखना है। तो आपने अब बाबा का पल्लू पकड़ लिया, अब जहां बाबा वहां आप, बाबा आपका बेड़ा पार कराएगा ही कराएगा, उसके ऊपर विश्वास, एक बल एक भरोसा, एक ही शक्ति काम कर रही है और एक ही हमारे जीवन का भरोसा है, वो हमारे राजी, एक रब राजी तो सब राजी। अब किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, किसको राजी करना है, एक रब को, जब रब मिल गया तो सब मिल गया, और क्या चाहिए, कुछ चाहिए अब धन दौलत मिले या ना मिले, नौकरी हमारे पास हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, लेकिन हमारे साथ कौन है, कौन है हमारे साथ, सर्वशक्तिवान दुनिया का मालिक। श्री कृष्ण ने के पास जब अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं तो अर्जुन क्या मांगता है और दुर्योधन क्या मांगता है, कहानी सुनी है ना, अर्जुन दुर्योधन ने क्या मांगा, सेना मांग ली, और अर्जुन ने किसको मांगा, भगवान को मांगा। अब आप अर्जुन हैं या दुर्योधन, तो आपको पैसा चाहिए या भगवान, सेना का मतलब पैसा, धन दौलत, बाहर के सुख के साधन, एक तरफ वो एक तरफ भगवान, जीत किसकी होगी, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो जीतेगा बाद में, जिसके पास अच्छा सा घर होगा, मोटर गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, बड़ा स्टेटस होगा दुनिया में, वो जीतेगा या जिसकी तरफ भगवान होगा। तो दो चीजें हैं इस दुनिया में, या तो भगवान या सेना, या तो धन दौलत दुनिया के सुख ले लो या फिर बाबा को ले लो। बाबा आ गया तो सब आ गया, और वो चीजों के पीछे गए तो वो तो मिल गई लेकिन बाबा नहीं मिलेगा, फर्क पड़ गया ना। एक राजा था, राजा, राजा ने किसी ने कहा कि आपके पास बहुत धन दौलत है, बांट दो लोगों में, बुजुर्ग हो गए हो, कुछ दान पुण्य करो। उसने कहा ठीक है, कल से मैं दान पुण्य करना शुरू करता हूं। उसने अनाउंस करा दिया कि जितने भी महल में मेरी चीजें हैं, कल सवेरे उठ के जो महल के अंदर आके जिस चीज को जो हाथ लगाएगा वही चीज उसकी हो जाएगी। लोगों में बड़ी खुशी फैल गई, कईयों को लगा कि रानी के बड़े सुंदर सुंदर जेवरात हैं, हम उनको हाथ लगाएंगे वो हमारे हो जाएंगे। कईयों को लगा कि राजा के पास बहुत सोना चांदी हीरे मोती हैं, हम उनको अपना बना लेंगे। कईयों को लगा कि राजा के पास बड़ी अच्छी अच्छी गायें हैं, हम गायों को हाथ लगाएंगे, गायें हमारी हो जाएंगी। किसी ने कहा राजा के पास हाथी हैं, किसी ने कहा बड़े घोड़े हैं, उस जमाने में हाथी घोड़े भी बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि ट्रैवलिंग में वही तो काम आते थे, गाड़ियां थी भी। हर कोई अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से सोच रहा था कि हम ये करेंगे और सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। वादे के मुताबिक अगले दिन राजमहल के दरवाजे खोल दिए गए और जनता दौड़ पड़ी अपनी मनपसंद चीजों को हाथ लगाने के लिए। राजा राजगद्दी पे सामने बैठा हुआ था, तमाशा देख रहा था। कुछ लोग हीरों को छू रहे थे, उनको हीरे दे दिए गए। कुछ लोगों ने अच्छे कपड़ों को टच किया, उनको अच्छे कपड़े दे दिए गए। कुछ लोगों ने किसी चीज को, किसी चीज ने किस चीज को। तो राजा का दरबार लगा हुआ था, लोग आ रहे थे अपनी मनपसंद चीजों को हाथ लगा रहे थे। राजा देख रहा था, इतने में एक लड़की वहां एंटर करती है, और वो लड़की ना इधर जाती है ना उधर जाती है, उसको किसी चीज से हाथ लगाने से कोई मतलब नहीं था। वो सीधी दरवाजे से होते होती राजा के पास आने लगती है। तो राजा को लगा शायद ये कुछ पूछना चाहती है, तो राजा ने उसके साथ देखा उसकी तरफ। जैसे ही वो नजदीक आई, उसने क्या किया, जाकर राजा को हाथ लगा दिया। राजा पे हाथ रखा तो राजा किसका हो गया? उस लड़की का ही राजा हो गया, क्योंकि राजा ने शर्त रखी थी किसी भी चीज पे हाथ लगाना वो उसकी हो जाएगी। तो उसने क्या समझदारी की, राजा के ऊपर ही हाथ रख दिया, तो राजा उसका, राजा जिसका सारा सामान, सारा राज्य, सारी धन दौलत, सारे महल माड़िया उसकी हो गई। तो अब हमने भी किसके ऊपर हाथ रख दिया, हमने भी शिव बाबा ज्योति बिंदु पे ही हाथ रख दिया, उस पे हाथ रखा तो अब सब कुछ हमारा हो जाएगा। अभी नहीं देता बाबा, अभी क्यों नहीं देता आपको धन दौलत? हाँ अभी ले गया, दे दिया तो आपको अटैचमेंट हो जाएगी, उससे मोह हो जाएगा, और जैसे वो खत्म होगा लुटेगा तो सही, क्योंकि ये चोरों की दुनिया है। यहाँ तो आपको दे दिया, आज सब लुटेरे बैठे हैं, आपका कोई लूट लेगा तो आपको फिर दुख होगा, इसलिए बाबा फिर उतना नहीं देता, आपको थोड़ा देता गुजारे लायक, बाकी बाबा कहता है बाद में दूंगा जब तुम्हारा अपना राज आ जाएगा। अभी तो तुम जंगल में हो, वनवास में हो, अब वनवास वाले को दे दिया है, लुटेरे लूट लेंगे, इसलिए बाबा अभी नहीं देता, अभी सूक्ष्म चीजें देता है, वो चीजें देता है जो अभी मिल सकती हैं। बाकी धन दौलत महल माड़िया सतयुग में इतनी मिलेंगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा, इतना होगा कि ईंटें बाबा कहता सोने की होंगी, जैसे यहां पर ये बल्ब जल रहे हैं वहां पर हीरे ऊपर चमक रहे होंगे। तो आपके पास तो अथा था, अथा लोग तो आजकल तोलों में सोना लेते हैं, वहां तो क्विंटलों के हिसाब से महलों में लगा होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, यहां मिलता नहीं इसलिए लोगों को वैल्यू बना रखी है, उसका रेट हाई कर रखा है, वहां तो थोक में होगा। क्योंकि अब आपका भी क्यों नहीं ज्यादा सोने चांदी में दिल जाता, जाता है माताओं का, ज्यादा अच्छे अच्छे जेवरात पहन लें, अच्छी अच्छी चीजें कर लें, क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनका मन जाएगा जिसने कभी देखा ना हो, जिसने सोना चांदी हीरे मोती देखे नहीं है उसको दिल जाएगा, उसकी बुद्धि भटकेगी कि ले लूं। आपने तो सतयुग में थोक में रखा हुआ था अपने पास, तो आप कहोगे जी हमारे लिए तो पत्थर है, हमारे लिए इसकी क्या वैल्यू, हमारे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमारे पास तो अब ज्ञान का खजाना है, बाबा का साथ है और अपने ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए आने वाला टाइम किसका होगा? अब हमारा ही होगा, हमारे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। लोग तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक लोगों के अच्छे दिन नहीं शुरू हुए, 2014 में कहते थे, लेकिन हमारे शुरू हो गए, जब से बाबा को पकड़ा तभी से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। लेकिन बाबा कहता थोड़े में भी खुश नहीं होना है कि बाबा का बन गए और सतयुग का गेट पास तो मिल ही गया, और सतयुग में स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे, थोड़े में खुश नहीं होना है, पुरुषार्थ करके राजा बनना है, प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रजा बेचारी पत्थर उठा उठा के राजा के महल बनाती रहेगी दोपहर कलयुग में भी, और राजा आराम से कितने बड़े बड़े महल, जब लोगों के पास झोंपड़ियां थी तो राजा के इतने बड़े बड़े महल थे, कितना फर्क होता है राजा और प्रजा में। इसलिए थोड़ा भी कम पुरुषार्थ किया ना, मान लो 16 कला संपूर्ण हमें बनना है ना, अगर 16 कला संपूर्ण बन गए तो कहां जाएंगे? सतयुग के शुरू में। अगर 14 कला बने तो कहां जाएंगे? 2 कला का भी कितना नुकसान है, 2 कला कम रह गई तो त्रेता में एंट्री होगी, सतयुग में एंट्री ही नहीं हो सकती। मान लो आपने और ज्यादा पुरुषार्थ किया, 14 कला के बजाय 15 कला तक पहुंच गए तो कहां जाएंगे? सतयुग के आधे में, पहले में नहीं जाएंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं देख पाएंगे, मिस हो जाएगा ना वो भी। जैसे बच्चों का देखना, 60% तक नंबर बड़ी आसानी से आ जाते हैं, 60 से 70 पे जाना है और मेहनत करनी पड़ती है, 70 से 80 उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है, और 80 से 90 उससे भी डबल मेहनत करनी पड़ती है, और 90 से भी ऊपर जाना है और ज्यादा मेहनत। ऐसे ही 14 कला तक तो बड़े आराम से पहुंच जाओगे, मेरा बाबा कहा बेड़ा पार, 14 से 15 में जाने में मेहनत है, और 15 से फिर 16 में जाने के लिए और ज्यादा मेहनत है। ठीक है, अब क्या बनना है पुरुषार्थ करके? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, ये देवताओं की क्वालिफिकेशन है। जिसके पास ये योग्यता होगी वो सत्युग में जाएगा। लास्ट में एक बात पूरी करता हूं, सर्वगुण संपन्न की बात आई, सर्वगुण संपन्न अभी बनना है या सत्युग में जाके बनना है? अभी बनना है ना, तो कैसे पता चलेगा कि हम सर्वगुण संपन्न बन गए हैं कि बनना है? पता भी तो चले ना, पढ़ाई का इम्तिहान होना बड़ा जरूरी है। इम्तिहान ना लो तो आपको सोचेंगे हम तो सर्वगुण संपन्न है। टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने आप को चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि मैं कहां तक बना हूं, सर्वगुण संपन्न बना भी हूं या नहीं बना हूं? कैसे पता चलेगा, कैसे हम अपने आप को चेक करें? उसका सीधा सा फार्मूला है, आप अगर सर्वगुण संपन्न बने हैं तो आपकी नजर गुणों पे जाएगी, आप गुणों के ऊपर जाएंगे, आपको क्या दिखाई देगा? गुण नजर आएंगे दूसरे के, क्योंकि आप सर्वगुण संपन्न बन गए। अगर नहीं बने होंगे तो क्या दिखाई देंगे? तो अवगुण दिखाई देंगे। और जो चीज आपको चाहिए, जो चीज आपको पसंद है, वही तो आप मार्केट में जाके खरीदते हो ना। मार्केट में कितनी चीजें हैं, सारियां तो नहीं खरीदते आप, कौन सी चीज खरीदते हो? जो आपको चाहिए और जो आपको पसंद है, अच्छी लगती है। अब आप दूसरे के अवगुण देख रहे हो, मार्केट में कौन सी चीज देखते हो? जो चाहिए। अब दूसरे के क्या देख रहे हो आप? अवगुण। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? अवगुण। अब आप अवगुण ही चाहिए, तभी तो अवगुण देख रहे हो। आपको पसंद क्या है? आपकी पसंद अवगुण है, और जो चाहिए वो मिलता है, दुनिया में नियम है। जिस चीज को आपने दिल से चाहा, जिस चीज को आपने दिल से देखा, वो आपकी हो जाएगी। आपने दूसरे के अवगुण देखे उनको, इसका मतलब आपने उनको पसंद किया। पसंद किया मतलब वो आपको मिलने वाले हैं, मतलब दूसरे की बुराई आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए अब क्या देखना है? अगर आप गुणग्राही हैं तो आप सरल गुण संपन्न बनेंगे। अगर आपकी नजर अवगुणों पे जाती है तो फिर आप सर्वगुण संपन्न अभी बनने से बहुत ज्यादा दूर हैं। ठीक है, ऐसे बीच बीच में हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ओम शांति।